शांति। आप सभी बहुत दिनों से वैसे तो 3 दिन हुए, लेकिन ऐसे लग रहा है ना बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। बहुत सुंदर ये 3 दिन का समय आपका बीत रहा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, और हम ये पूरा ही 7 डेज का कोर्स जैसे ये 3 दिनों में हम ग्रहण कर रहे हैं, वो भी इस सुंदर तपोभूमि में। आध्यात्मिक ज्ञान का जो हम श्रवण कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और ये चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हम ये बातों को अपने दैनिक जीवन में लाएंगे, डेली हमारे लाइफ में इन बातों को समझकर इसका फायदा हम कैसे अपने आप को और अपने परिवार और अपने कार्य क्षेत्र में महसूस करेंगे। तो परमात्मा के जो हमारे जो हम डेली महावाक्य सुनते हैं, उसमें कई बार परमात्मा ये बहुत सुंदर शब्द कहते हैं कि विश्व का जो ड्रामा है वो कल्याणकारी है। तो जैसे वो सिस्टर बता रहे थे कि परमात्मा ही को ही हम क्रिएटर और डायरेक्टर कहते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा को, तो वो बहुत सुंदर रूप से परमात्मा कहते हैं इसमें बहुत कल्याण छिपा हुआ है हर सीन में। लेकिन इसका कल्याण हम कैसे महसूस करें, ये ड्रामा कैसा है, उसको जरूर जो क्रिएटर और डायरेक्टर है वही हमें बताएगा। लेकिन जैसे हमने देखा कई सेशंस में, शिवानी बहन ने भी हमें बहुत प्यार से कई बातें समझाई कि इस ड्रामा में कर्म के द्वारा, चाहे संकल्प बोल और हमारे कर्म है दैनिक रूप में, उसमें हम इस ड्रामा में अपने रोल को डिफाइन कर सकते हैं। फिर भी परमात्मा आकर हमें ये वर्ल्ड ड्रामा व्हील कहो या सृष्टि चक्र की एक बहुत सुंदर समझ देते हैं, और इस समझ को हमने अपने दैनिक जीवन में भी कई बार महसूस किया है। जब भी हमने परमात्मा की विशेष पूजा की है, देवी देवताओं की पूजा की है, घर में कोई बहुत सुंदर प्रसंग हुआ है, कोई नया कार्य किया है, कोई नई चीज खरीदी है, तो हमने हमेशा कौन सा चिन्ह लगाया है, कौन सा चिन्ह लगाया है, स्वस्तिका का। और जैसे ये चिन्ह हम लगाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि बहुत शुभ चीज जैसे हमारे उस वस्तु पर भी स्वीकार हो गई। उसके नीचे लिखते भी हैं, कुछ लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, शुभ लाभ। तो हमने बहुत प्यार से लिखा जरूर शुभ लाभ, लेकिन ये निशानी शुभ क्यों है और इससे हमें लाभ क्या मिलता है, क्योंकि बिजनेस और इंडस्ट्री माना लाभ शब्द तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, प्रॉफिट जो है, प्राप्ति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या लाभ हमें मिलता है, ये परमात्मा आकर हमें अपने राजयोग के द्वारा समझ देते हैं। तो इसमें से कुछ बातें हमने पहले भी देखी है, लेकिन और इसको विस्तृत रूप में समझेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो समय का चक्र जो है, तो उस रूप से समय तो साइक्लिक है ही, लेकिन इस सृष्टि में बहुत सारे चक्र हैं, साइकिल्स हैं। साइकिल माना वो चीज रिपीट होती है, फिर से दोहराते हैं। तो समय का भी चक्र कहा जाता है, जैसे 24 घंटे हैं फिर से 24 घंटे होंगे, ऐसे ये दिन रात का भी चक्र है, यही शाम का समय है, और फिर कल हम देखेंगे 24 घंटे के बाद फिर से ये शाम का समय आ जाएगा। तो ये दिन रात का भी एक चक्र कहा जाता है। उसी रूप से अगर हम देखें तो मनुष्य के जीवन का भी चक्र कहा जाता है, और बचपन से लेकर हमारी जो वृद्ध अवस्था होती है वो भी एक चक्र के रूप में है। उसमें भी कई दौर हैं, कई फेजेस हैं हमारे लाइफ के। सबसे पहला फेज जो हमारा सबसे प्रिय होता है, हमारा बचपन का, नहीं, उसमें कई बातें हमें याद भी रहती है और हम उसको याद करके वो खुशी का अनुभव करते हैं। फिर हमारा युवा अवस्था, फिर हमारा एडल्टहुड प्रौढ़ अवस्था, और फिर वृद्ध अवस्था। तो हम देखते हैं कि ये जैसे हमने पहले लेसन में ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए हमने समझा कि फिर ये चौथे अवस्था के बाद हम जब ये शरीर छोड़ते हैं तो फिर से आत्मा जब शरीर ग्रहण करती है तो फिर से बाल अवस्था से हम शुरू करते हैं। तो उस रूप से हम देखते हैं सीजन्स भी हैं, सीजन्स भी चेंज होते हैं, वो भी हम देखते हैं। चार प्रकार के मुख्य सीजन्स हैं, उसमें कुछ अल्ट्रेशन तो होता रहता है। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ये कई प्रकार के चक्र हैं, ऐसे ही समय का चक्र है, सृष्टि चक्र, जो परमात्मा ने आकर हमें ये सृष्टि चक्र का दिव्य रहस्य जो है, गुह्य रहस्य जो है वो बताया है। परमात्मा बताते हैं कि ये सृष्टि चक्र का जो एक कल्प की अवधि है वो 5000 वर्ष है। भल कई बार हम ये शब्द 5000 एक न्यूमेरिकल फिगर समझकर हमें लगता है क्यों, लेकिन परमात्मा ने ये हमें रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा आपके पास भी। तो ये 5000 के एक चक्र में, एक साइकिल में, जिसको हम आध्यात्मिक शब्द में कहते हैं कल्प की आयु है, एक साइकिल को परमात्मा ये शब्द देते हैं कल्प। तो ये एक कल्प की जो आयु है, एक साइकिल की जो आयु है, इसके बीच आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है, किन युगों से गुजरती है, और उस अनुसार उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन आता है, इसका रहस्य ये स्वस्तिका की निशानी दर्शाती है। इसलिए स्वस्तिका, स्व की स्थिति का परिवर्तन इस समय के चक्र में कैसे होता है, और फिर ये समय कौन सा है, इस सृष्टि चक्र की जो समझ प्राप्त हो जाती है तो हम फिर अभी के समय को समझ सकते हैं कि अभी का समय सृष्टि चक्र में कहाँ है। तो अगर हम देखें तो कोई कभी भी हमने स्वस्तिका अगर निकाली है वो निशानी के रूप में, चिन्ह के रूप में, तो कैसे निकाला, राइट हैंड साइड से ऐसे निकाला। वैसे भी हम देखते हैं कोई शुभ कार्य हम किससे करते हैं, राइट हैंड से करते हैं। तो हम देखते हैं कि श्रेष्ठाचारी कार्य, राइटिस कार्य, इस राइट हैंड से। तो ये राइट साइड से ये चक्र जो शुरू होता है उसमें हम देखते हैं कि ये चारों युगों में ये चक्र में समय में परिवर्तन आता जाता है। तो सबसे पहला समय कौन सा था, जो आज हमने इस लेसन के पहले हमने शक्तियों के बारे में सुना कि हमारे अंदर मुख्य अष्ट शक्तियां हैं, लेकिन क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो उसकी रचना के रूप में हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। तो वो कौन सा समय था जब आत्मा उन संपूर्ण शक्तियों में स्थित थी, समर्थ थी। और आज के समय में हम देखते हैं कि ये सारी शक्तियां हमारे अंदर है, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा अंतर आ गया है और वो परसेंटेज धीरे धीरे समय के अनुसार कम होता गया है। तो वो शक्तियां कब संपूर्ण थी, क्योंकि अगर आज हम कहते हैं कि हम उन शक्तियों की कमी महसूस कर रहे हैं वो हमारे अंदर बहुत कम रह गई है, तो जरूर एक ऐसा समय था जब वो संपूर्ण थी। तो वो कौन सा समय था जहां ये शक्तियां हमारे अंदर संपूर्ण रूप से थी, जहां नेचुरल रूप में हम शक्ति स्वरूपा थे। तो वो समय को हम अलग अलग रूप से कहते हैं, शब्द हमने अलग अलग रूप से अलग अलग हम देखते हैं, धर्मों में उसका वर्णन है, फिलोसफीज में उनका वर्णन है। तो परमात्मा बहुत प्यार से हमें कहानी के रूप में इस सृष्टि चक्र के बारे में समझाते हैं कि वो समय था जब हम परम धाम से परमात्मा की ब्लेसिंग्स लेकर ये सृष्टि के चक्र में हम आए थे, और जब हम आए तो हमारा जो आरंभ का समय था, फर्स्ट समय, जिसको हमने सत्युग का समय, जो हमने सुना पहले भी कई हमारी लेक्चर्स में, शिवानी बहन ने भी हमें कहा कि अब इस समय हमारा जो ऊंचा लक्ष्य, हायर पर्पस है कि हमें फिर से ऐसा सत्युग क्रिएट करना है ना, क्रिएट करना है ना। तो वो समय था जब वो सत्युग नेचुरल रूप में सृष्टि पर था। अब उसके बारे में हमें समझ जरूरी है, तब तो हम वो क्रिएट करेंगे। तो सत्युग का समय कौन सा था, कैसा था, उस समय हम आत्मा कैसे थी, हमारे संबंध कैसे थे, प्रकृति कैसे थी, वो सारी नॉलेज परमात्मा हमें देते हैं। तब तो हम ऐसी सृष्टि की रचना के लिए हम परमात्मा के सहयोगी बनते हैं। तो उस रूप से अगर हम देखें तो ये चार युगों की कहानी, और उसमें भी एक बहुत सुंदर गुप्त पांचवा युग है जिसके बारे में परमात्मा हमें रहस्य समझाते हैं। तो ये पहला युग है गोल्डन एज, दूसरा है सिल्वर एज, फिर है कॉपर एज, फिर है आयरन एज, और वो गुप्त युग है कॉन्फ्लुएंस एज। सत्युग का समय, त्रेता युग का समय, द्वापर का समय, कलयुग का समय, और वो गुप्त युग जो है वो पुरुषोत्तम संगम युग का समय। तो पहला युग हम लेंगे सत्युग के बारे में। तो सत्युग के बारे में तो अभी आपको पता है, बताइए उस युग के बारे में हमें क्या पता है। सत युग का समय, तो सत शब्द अर्थात, सत शब्द किससे आता है, सत्य, नहीं तो सत्य, सत शब्द के कई अर्थ है, तो एक अर्थ है सत्य, ट्रुथ। तो उस समय हम सत्य स्वरूप में थे, अर्थात अपने ट्रू अवेयरनेस में थे, अपनी ट्रू आइडेंटिटी की स्मृति में थे। तो किसकी स्मृति में थे उस समय, आत्मिक स्मृति में थे। अभी आप देखिए सारे दिन में अगर आप चेक करें तो हम किस स्मृति में रहते हैं, नॉलेज तो हमें मिल गई है, भले यहाँ फ्राइडे को हमारा लेसन हुआ था आत्मा के बारे में, और फिर हमने उसके बाद भी सैटरडे के बारे में लेसन हुआ, और उसके बाद में कई लेसन्स हुए हैं, लेकिन हमें आत्मा के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो उसके पहले भी थी, ठीक ना। इसलिए हमने देखा कि कहाँ भी कोई मृत्यु का प्रसंग होता था तो हम हमेशा कहते थे कि इनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें। तो आत्मा शब्द कहते हैं, आत्मा की नॉलेज भी है, लेकिन आत्मिक स्मृति में रहना ये अभ्यास हमने शुरू किया है अभी। तो वो समय पर, सत्युग के समय पर हम किस स्मृति में थे, सदा किस स्मृति में थे, आत्मिक स्मृति में। इस समय क्या हो जाता है, बीच बीच में हम किस स्मृति में आ जाते हैं, शरीर के भान में। अभी जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो पहले हम अपने आप को क्या कहेंगे, क्या याद कराएंगे, कि हम शरीर नहीं है, हमें शरीर को चलाने वाली आत्मा है। सभी कमेंट्रीज में ये फर्स्ट सेंटेंस होता है, क्यों ये होता है, क्योंकि किस स्मृति में हम रहते हैं सारा दिन, अपने आप को शरीर समझते हैं। तो ये अभ्यास हम कहते हैं कि हमारे लेसन्स की शुरुआत भी इससे होती है, और अंत तक ये अभ्यास में हमें आगे बढ़ते जाना है। तो सत्युग में बहुत नेचुरल रूप में हम अपने सत्य स्वरूप में थे, और इसलिए ये पहला अर्थ सत्य अर्थात ट्रुथ, हम ट्रू अवेयरनेस में रहने की वजह से अपनी ओरिजिनल गुण और शक्तियों में स्थित थे। दूसरा सत का अर्थ है सार, जैसे हम देखते हैं कि रोज पेटल्स होते हैं तो उससे कहते हैं इसका सत निकाल दो, रोज का एसेंस निकलता है ना, तो सत अर्थात सार। तो वहां सत्युग में हमारा जीवन बहुत सार युक्त था, अर्थ युक्त था, मीनिंगफुल था। क्यों, क्योंकि हमारा जीवन नेचुरली आनंद और सुख स्वरूप था, संतुष्ट स्वरूप था, तो वहां सभी प्रकार की खुशी या सुख की अनुभूति थी। कौन से प्रकार की सुख की अनुभूति? हर प्रकार की। तो मुख्य चार प्रकार के सुख की अनुभूति हम देखते हैं। एक है देह का सुख, तन का सुख, दूसरा है मन का सुख, तीसरा है धन का सुख और चौथा है जन का सुख। तो हम देखते हैं सत्ययुग में चारों प्रकार का सुख संपन्न रूप से अनुभव था और साथ में था, इसलिए हमारा जीवन बहुत सार युक्त था, आनंदित था। इस समय अगर हम कंपेयर करें तो ये चारों प्रकार का सुख एक साथ नहीं है, है ना? कहाँ कहाँ तन का सुख है, अर्थात स्वास्थ्य है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो स्वस्थ जीवन है उनका, तो कोई भी छोटी मोटी बीमारी आती भी है तो जल्दी हील कर लेते हैं, तो तन का स्वस्थ होना ये भी बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, तो तन से स्वस्थ है, लेकिन मन से कोई ना कोई प्रकार से थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, थोड़ा चिंता में रहते हैं, कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कहाँ तो डिप्रेशन भी रहता है, तो मन का दुख है, मन से स्वस्थ नहीं है, मन का आनंद नहीं है। कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि मन से भी तंदुरुस्त है, तो तीसरा फिर धन जो है, या तो धन की कमी है या धन होते हुए भी उस धन के साथ साथ दुआएं नहीं है, इसलिए उस धन का जो सुख होना चाहिए उसका अनुभव नहीं है, धन के साथ साथ बहुत सारी चिंताएं हैं, धन है लेकिन बरकत नहीं है, धन को संभालने की चिंता, धन को यूज करने की चिंता, तो धन होते हुए भी उसका दुख है, उससे अशांति है, धन का सुख नहीं है। और हम देखते हैं कहाँ कहाँ धन का भी सुख हो जाता, लेकिन फिर चौथा प्रकार का सुख अर्थात कौन सा सुख, कौन सा सुख? जन का, जन का सुख अर्थात संबंधों का सुख। जो आज सुबह भी हमने देखा ना, कल भी हमने देखा कि कैसे संबंधों में न चाहते भी हमारे दुख की लेन देन ज्यादा है, ऐसा है? चेक करें तो संकल्पों में, बोल और कर्म का तो थोड़ा ध्यान रहता है, लेकिन संकल्पों में एक दूसरे के प्रति न चाहते भी दुख की फीलिंग्स, व्यर्थ फीलिंग्स जो है वो ज्यादा लेन देन होती, ऐसा है? ऐसा है? तो वहां फिर संबंध में कहां ना कहां थोड़ी थोड़ी खिटखिट होती रहती है। अब सत्ययुग में क्या है, चारों प्रकार का सुख है, तो वहां हम देखते हैं तन से भी हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति वहां संपूर्ण पावन है, पांचों तत्व जो है वो संपूर्ण पावन है, शुद्ध है, तो वहां हमारे शरीर रूपी प्रकृति जो है वो हेल्दी है, नेचुरल रूप से हम दिव्यता से संपन्न है, इसलिए नेचुरल श्रृंगार है, दिव्यता का श्रृंगार है। वहां हम देखते हैं कि हम मन से भी संपूर्ण रूप से आनंद में हैं। हम सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो उनको देखकर कितनी खुशी हो रही है ना। हमारा संपूर्ण जीवन ही ऐसा सुखदायी जीवन, गृहस्थ में रहते हुए संपूर्ण पवित्र जीवन, तो ऐसा सुंदर दिव्य जीवन। और वो समय पर हमने देखा कि हम तन से, मन से, धन से भी, आप देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है, तो धन से भी जितने साधन और संपत्ति की आवश्यकता है, उस समय धरती भी संपूर्ण संपन्न थी, तो सारी आवश्यकताएं जो है, प्रकृति जो है वो हमारे सामने उपलब्ध थी। और फिर हम देखते हैं कि आत्मिक स्मृति होने के कारण एक दूसरे के प्रति कौन सी भावनाएं थी, सिर्फ और सिर्फ शुभ भावनाएं, शुद्ध भावनाएं, दुआएं, कल्याण की भावनाएं, ये नेचुरल स्वभाव था। तो संबंध भी कैसे थे, सुखदाई, प्रकृति के भी संबंध हमारे साथ सुखदाई, जानवरों में भी आपस में संबंध, हम सुनते हैं ना सत्ययुग में क्या था, शेर बकरी हम देखते हैं एक घाट पर पानी पीना, माना आपसी संबंध में कितनी मिठास। तो ये समय सत्ययुग का समय जो हम वर्णन करते हैं अलग अलग शब्दों में, चाहे उसको स्वर्ग कहते हैं, चाहे पैराडाइज कहते हैं, चाहे हेवन कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, तो हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग फिलॉसफीज में उस वर्ल्ड को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सृष्टि का आधार क्या है? आत्मा की दिव्यता और शुद्धता। आत्मा इस समय संपूर्ण पावन है, पवित्र है, शुद्ध है, सातों गुणों में संपन्न है। पहले दिन हमने सुना ना, आत्मा के निज गुण कौन से हैं, निज स्वभाव कौन से हैं, वो पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा प्रोफाइल है। नहीं, जैसे आप सब यहाँ आए हैं, कोई भी आपका परिचय पूछता है तो आपको अपना नाम, अपना कार्य, अपना जो हमारा जिम्मेवारी का व्यक्तित्व है, हमारे परिवार की जानकारी, जिस स्टेट से आप आए हैं, जिस प्रकार की भाषा है, कल्चर है, वो सारी जानकारी नेचुरल रूप में याद रहती है। याद रहती है। किसी को याद नहीं हो तो वो तो ठीक नहीं है। नहीं, कहेंगे इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको अपना ही परिचय याद नहीं हो। तो जैसे हमें अपना इस देह भान का जो प्रोफाइल है वो कितना स्वाभाविक रूप में याद है, तो आत्मा का प्रोफाइल क्या है, आत्मा के निज गुण क्या है? आत्मा जो है शुद्ध स्वरूप, पवित्र स्वरूप है, और शांत स्वरूप है, और हाँ, पवित्रता, शांति और स्नेह स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो ये प्रोफाइल हमें क्या करना पड़ेगा? पक्का करना पड़ेगा। जैसे अपने देह का प्रोफाइल तो पक्का हो गया है ना, पक्का हो गया है ना। आप में से किसी को नींद में से भी उठा के पूछे आपका नाम क्या है, बता देंगे ना, कहाँ से आए हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, बता देंगे ना, प्रोफेशन क्या है, स्थान से, नेचुरल है। नहीं, सुबह उठते ही हम जैसे उठते हैं तो हमें तुरंत अपना प्रोफाइल, अपना व्यक्तित्व, अपना रोल, अपना कारोबार सब इमर्ज हो जाता है। इमर्ज होता है कि कहीं बुक में हम लिखते हैं और फिर रोज पढ़ते हैं? नहीं, नेचुरल है। एक ही जीवन यात्रा का व्यक्तित्व कितना पक्का हो गया है, पक्का हो गया है ना। लेकिन जो हमारा इटर्नल स्वरूप है, जो हमारा निज स्वरूप है, अपना प्रोफाइल है, उसको फिर से हमें पक्का करना है। तो सत्युग में क्या था? वो पक्का था, नेचुरली। हम सदा ही इस नेचुरल स्मृति में स्थित थे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। वो नेचुरल स्वरूप में हम उसी स्मृति में हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध नेचुरल थे, और इसलिए उस समय हमारे सातों गुणों में हम संपन्न थे। सतोगुणी, जो हमने पहले भी सुना, सतो प्रधान, सातों गुणों में 100% अर्थात सतो प्रधान। और इसलिए हमें क्या कहा जाता था उस समय, हमारे उस स्वरूप में दिव्यता के कारण, हमारे अंदर सारे दैवी गुण के कारण हमें क्या कहा जाता था? देवता। इसलिए हमने सुना ना कैसे हम कुल देव, कुल देवी कहते हैं, क्योंकि वो सभी कौन थे? हमारे ही पूर्वज, वो हमारा ही संपूर्ण स्वरूप। तो जैसे आज कोई संस्था है, उसको हम प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे उस संस्था को, उस बिजनेस को किससे कंपेयर करेंगे? भारत में या विश्व भर में जो बेस्ट होगा, नहीं, बेंचमार्किंग उसी से करेंगे ना, बेस्ट प्रैक्टिस उस इंडस्ट्री में या उस बिजनेस में होगा, उससे कंपेयर करेंगे, तब जाके हम प्रगतिशील होंगे। तो परमात्मा ने हमें ये बेंचमार्किंग दिया है कि हमारा जीवन कैसे हमें बनाना है, कैसा बनाना है? लक्ष्मी नारायण जैसा। गृहस्थ जीवन कैसे बनाना है? लक्ष्मी नारायण जैसा, ऐसा ही दिव्य, ऐसा ही नेचुरल दैवी गुणों से संपन्न स्वरूप। तो ये सत्युग की स्मृति या जानकारी परमात्मा हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, ये हमारा नेचुरल संपन्न संपूर्ण स्वरूप है। तो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसमें ईश्वर विश्वविद्यालय में हमें ये एम ऑब्जेक्ट परमात्मा आकर समझाते हैं। फर्स्ट डे हमें ये एम ऑब्जेक्ट दी जाती है। इसलिए हमने शास्त्रों में भी कहा ना कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, संपूर्ण दैवी गुणों से संपन्न। फिर नारायण का स्वरूप दिखाया जाता है। और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने, अर्थात ऐसे दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करे। तो वो समय ही था जब हमारे अंदर वो दिव्यता नेचुरल थी। तो अब इस समय के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, तो हमें क्या करना है? अपने आप को फिर से उसी नेचुरल स्वरूप में, उस दैवी स्वरूप में अपने आप को स्मृति में इमर्ज करना है कि ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, मैं ऐसे ही देवी देवता कुल की आत्मा हूं। तो फिर से हमें वो बेंचमार्किंग रखकर फिर से वहां तक पहुंचना है ना। हमें भी पहुंचना है और सृष्टि को भी परिवर्तन का कार्य जो परमात्मा कर रहा है उसमें हमें मददगार बनना है। तो हम अपने आप को जब देवी देवता बनाएंगे तो सृष्टि को पावन बनाना सहज हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है परमात्मा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में। तो उस समय हमारे अंदर संपूर्ण दैवी गुण थे और हमारे अंदर 16 कला संपूर्ण। जब भी हम देवी देवताओं की महिमा करते हैं भक्ति में तो हम कहते हैं सर्व गुण संपन्न, माने हर गुण और हर गुण में संपन्नता। सर्व गुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म, 16 कला संपूर्ण। तो ये जो महिमा हमने गाई, बहुत प्यार से गाई, लेकिन ये महिमा इसलिए हमने गाई, परमात्मा हमें फिर से स्मृति दिलाते हैं कि ये हमारी ओरिजिनलिटी है, ये हम ऐसे थे, ये हमारा स्वरूप था। क्यों? क्योंकि परमात्मा को जब हमने संपन्न कहा कि वह है ही सर्वशक्तिवान, वो है ही शांति का सागर, वो है ही प्यार का सागर, तो जैसा रचयिता ऐसी ही रचना। क्रिश्चियनिटी में बहुत सुंदर शब्द कहते हैं कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अर्थात उन्होंने अपने जैसा ही हमें बनाया है, तो इसलिए हमारा ये नेचुरल स्वरूप है। तो वो जैसे हमको परमात्मा एक कहानी के रूप में सुनाते हैं ताकि हम अपने इस नेचुरल स्वरूप को फिर से अपने सामने इमर्ज कर सके, हर गुण में संपन्न। तो हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण हैं, उसमें भी हमें और संपन्नता लाते रहना है। ये सारे गुण हमारे ओरिजिनल गुण हैं, लेकिन जिस गुण को हमने यूज नहीं किया, उसको संपन्न नहीं बनाया, तो क्या हो गया? पेशेंस जो है, धीरज जो है, वो हमारा गुण है, परमात्मा की देन है, लेकिन हमने यूज नहीं किया तो क्या आ गया हमारे जीवन में? पेशेंस को नहीं यूज किया तो क्या आ गया? अधीरता आ गई ना, इम्पेशेंस आ गया ना, इम्पल्सिव नेचर हो गया ना। तो जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो आत्मा परमात्मा के कनेक्शन से ये सारे दैवी गुणों को अपने अंदर और भरती जाती है, उसको और शक्तिशाली बनाती जाती है, और फिर उसी की स्मृति में हर संकल्प बोल कर्म करती है। तो जैसे उस गुण की स्मृति में हम कर्म करते हैं तो वो गुण क्या हो जाएगा हमारे अंदर? पक्का हो जाएगा। तो परमात्मा हमें क्यों स्मृति दिलाता है? ताकि इस स्मृति में रहकर हमें हर कर्म करना है कि मैं हूं ही सत्युगी देवी देवता कुल की आत्मा। तो फिर हमारे अंदर हर गुण को हम महसूस करते हुए उसके आधार से हर कर्म करते चले, हर संकल्प बोल और कर्म करते चले। अब कहानी के रूप में परमात्मा हमें ये बताते हैं कि जैसा वो समय बीतता है, सत्युग का समय, तो वैसे भी हम देखते हैं, फिजिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी, अर्थात कोई भी चीज जो संपन्न है वो जैसे ही प्रयोग में आती है, उसका प्रयोग होता है, उसको यूज करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें गिरावट आती है, डिप्लीशन होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो फिर ये लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है कि जब वो डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाता है तो एक ऐसा समय आता है कि जहां वो डेप्रिसिएशन में उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और फिर उस सिस्टम को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए क्या करना होगा? सिस्टम जो है उसकी संपन्न ऊर्जा 100% से शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे प्रयोग होते धीरे धीरे ऊर्जा कम होती गई। अब जैसे जीरो के नजदीक आ गई तो रिचार्ज करना होगा। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता कि रीचार्ज करने के लिए उस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके पास शक्ति नहीं है अपने आप को स्वयं रिचार्ज करने की। उसी रूप से हम देखते हैं कि ये जो डिस्चार्ज होने का एक जो हम कहेंगे साइकिल में समय आता है, तो सत्युग के बाद थोड़ा सटल सूक्ष्म रूप में डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, और ये दूसरा समय जो है जिसको हम त्रेता युग कहते हैं। इसलिए त्रेता शब्द त्रुटि से आता है, संस्कृत में त्रुटि अर्थात थोड़ी कमी, कहते ना इसमें थोड़ी त्रुटि है, बट बहुत बड़ी कमी नहीं। जैसे हम कहते हैं ना थोड़ा कम है न के बराबर, कहते नेग्लिजिबल, पता ही नहीं पड़ेगा न के बराबर। कोई हमने कोई वस्तु यूज की, नई चीज है, नहीं थोड़ी दो तीन बार यूज किया है, लेकिन कोई व्यक्ति देखता है मोबाइल है या और कोई चीज है, कहेगा अरे ये नया लिया, नया ही है क्योंकि अभी थोड़ा ही समय यूज हुआ है। कपड़ा पहना दो तीन बार आपने वो वस्त्र पहन लिया अलग अलग ओकेजन में, लेकिन फिर भी कोई देखेगा कहेगा अरे पहली बार पहना, नया है ये, कहेंगे नया है क्योंकि नया जैसा ही है। तो उसी रूप में ये समय पर आत्मा उसी सर्व गुणों से, उसी संपन्न दिव्यता से संपन्न है, थोड़ी त्रुटि आरंभ हो चुकी है। थोड़ी जो त्रुटि है उसका अंतर कैसे दिखाई देता है कि उस समय हमारी सतो प्रधान अवस्था से सतो अवस्था में हम आते हैं। जो कहा कि 14 कला संपन्न, 16 कला से 14 कला, तो ये नहीं है कि दो कला कोई कम होती है, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा अंतर। 16 कला माना सिर्फ 16 नंबर नहीं, वैसे तो 16 कलाएं भी बहुत सुंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन की कला, लेखन की कला, बोलने की कला, सुनने की कला, संगठन में आपस में जोड़ने की कला, बहुत सारी कलाएं हैं जो हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन 16 शब्द माना कंप्लीट। जैसे हम कहते हैं ना कि इसमें कई बार कोई सच कह रहा है तो कहता है भाई मैंने 16 आना सच बोला, कहते 16 आना क्यों कहा, क्योंकि 16 आना माना कंप्लीट, एक रुपए में 16 आना, 50 पैसा 8 आना। तो उस रूप से 16 कला संपन्न माना हर कर्म कला का स्वरूप है, कला अर्थात सुंदर है, योग्य है, देखने योग्य है। नहीं कभी कभी हम देखिए, मुझे याद है छोटेपन में हम देखते थे कि जब सर्कस में जाते थे, नहीं अभी तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ होता भी होगा, लेकिन सर्कस में कैसे वो चलते हैं रोप्स पर और अलग अलग कलाएं दिखाते हैं, तो है वही कर्म चलना जंप करना ये सब, लेकिन वो स्वरूप में विशेषता है, परफेक्शन है, इसलिए वो कला का स्वरूप है, तो हमें वो देखकर उसका आनंद आता है। अब सत्युग में हर कर्म कला के योग्य थे, उसमें परफेक्शन था, डिविनिटी थी, इसलिए 16 कला संपन्न कहा जाता है। अब त्रेता युग में क्या है, थोड़ा अंतर, कुछ परसेंटेज में अंतर आया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सतो स्वरूप है। सत्युग और त्रेता दोनों समय पर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, उस नेचुरल आत्मिक स्मृति में है, दैवी गुणों की नेचुरल स्मृति है। अब ये तीसरा युग आता है, इस युग का नाम है द्वापुर। द्वापुर, द्वा माना द्वेत, ड्युअलिटी। तो ये युग में परिवर्तन आता है, कौन सी ड्युअलिटी सामने आ जाती है, द्वेत कौन सा शुरू हो जाता है। सोल कॉन्शियस तो हम है ही, लेकिन क्या शुरू हो जाता है, बॉडी कॉन्शियस, हम देह भान में आते हैं, और धीरे धीरे देह भान से देह अभिमान का स्वरूप आ जाता है। देह भान माना इमेज कॉन्शियसनेस, जैसे मैं ये स्मृति में हूं कि मैं दीपा बहन हूं, मैं इतने वर्षों से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूं, मैं इतने वर्षों से समर्पित हूं, मैं ये कार्य कर रही हूं, तो ये देह भान है, ये इमेज कॉन्शियसनेस जो नेचुरल हो गया हमारे लिए। और फिर देह का अभिमान, फिर कोई अगर कोई विशेषता है तो उसका अभिमान, ये मैं ही कर सकती हूँ, ये मैं बहुत अच्छी तरह करती हूँ, तो वो देह अभिमान। तो हम देखते हैं कि द्वापुर से पहले क्या आरंभ होता है, देह भान, इमेज कॉन्शियसनेस। तो जो स्वरूप हम देखते हैं मिरर में उसको क्या समझते हैं, उस स्वरूप को क्या समझते हैं, अपना अस्तित्व समझना शुरू करते हैं। उसके पहले सत्य त्रेता में क्या अस्तित्व की स्मृति में थे, आत्मिक स्मृति में, उस दिव्य स्वरूप में, उस बिंदु स्वरूप की स्मृति में थे। दैहिक स्वरूप तो बहुत दिव्य था, सुंदर था, लेकिन स्मृति कौन सी थी, आत्मिक। इसलिए दैहिक स्वरूप भी बहुत दिव्य और शुद्ध था। और यहां जैसे हम द्वापर में आते हैं तो जो मिरर में रोज हम देख रहे हैं अपना देह का स्वरूप, उसको हमने अपनी आइडेंटिटी समझ ली, ये मैं हूं। और वो मैंपन धीरे धीरे सक्षम होता जाता है, मजबूत होता जाता है। फिर मैं के साथ फिर मेरापन, मैंपन भी आ जाता है, मेरापन भी, ये मेरा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार है, धर्म है, भाषा है, कल्चर है, स्टेट है, बहुत सारी चीजें। और फिर क्या हो जाता है, ये मैंपन और मेरापन आ जाता है तो क्या हो जाता है, क्या आ जाता है जी, फिर हमारे अंदर ये धीरे धीरे ट्रेस आता है, पहले तो सूक्ष्म रूप में, लेकिन धीरे धीरे ये सभी विकारों का आरंभ, प्रवेशता आ जाती है। तो ये पांचों विकार जो हम रावण के रूप में देखते हैं, तो 10 शीश दिखाए हैं ना, पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के, व हम देखते हैं कि बहुत सारे विकार, बहुत सारे, उनकी बहुत बड़ी टीम है ना, मुख्य जो उनके मंत्री हैं, 10 दिखाए हैं या 5 हम कहें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो मंत्री है, लेकिन उनकी टीम जो है, उनकी सेना जो है बहुत बड़ी है। कितनी सूक्ष्म नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर आती गई। और धीरे धीरे हमने क्या किया, कलयुग तक जब पहुंचे तो ये सभी हमारे अंदर जो नकारात्मकता है या ये विकार है, इनको क्या समझ लिया, स्वभाव समझ लिया, ये हमारा नेचुरल स्वभाव है, ये समझ लिया। अब द्वापर में तो प्रवेश हुआ है, तो जैसे जैसे ये प्रवेश होना आरंभ हुआ तो इसके आधार से हम सोचने लगे, इसी के आधार से हमारे बोल और कर्म होने लगे। अब जैसे हमने ये नकारात्मक संस्कारों को कर्म में लाना शुरू किया तो क्या हो गया, वो संस्कार मजबूत होते गए। हर बार गुस्सा करते करते क्रोध का संस्कार क्या हो गया हमारे अंदर, मजबूत हो गया। तो शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा इरिटेशन से, थोड़ा थोड़ा अपसेट होने से, पर धीरे धीरे क्रोध बनकर फिर एग्रेसिव नेचर बन गया। तो हम देखते हैं कि ये, और ये समय की और एक सुंदर विशेषता है कि ये समय पर फिर धर्म पिताओं का भी आगमन हुआ, क्योंकि जैसे जैसे हमारे संकल्प बोल और कर्म में ये विकारों की प्रवेशता आ गई तो क्या हो गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके साथ में बहुत सारी सूक्ष्म कमजोरियां, जैसे जैसे ये हमारे बोल कर्म में आती गई तो हमारे जीवन में दुख और अशांति का आरंभ हो गया। सत्युग त्रेता में कैसे थे, हमारा स्वरूप क्या था, संपूर्ण शुद्ध और नेचुरल रूप में सुख स्वरूप, और द्वापर से दुख का आरंभ हुआ। तो दुख के आरंभ में क्या हम करेंगे, जीवन में जैसे ही दुख आता है तो हम क्या करते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में करे तो दुख काहे कोई, तो किसको याद करना शुरू कर दें, परमात्मा को, ईश्वर को, गॉड फादर को, अल्लाह को। तो हमने उनको याद करना शुरू किया तो उनके बहुत सारे मैसेंजर्स धीरे धीरे सृष्टि पर उनका आगमन हुआ। तो द्वापर में हमने जैसे सुना भी पहले कि बहुत सारे मैसेंजर्स आए, और हर एक मैसेंजर ने क्या किया, मैसेंजर ने क्या मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया हमें, क्या मैसेज दिया कि किसे याद करना है हमें, परमात्मा पिता को याद करना। हर एक ने हमें उस ईश्वर के तरफ, गॉड फादर के तरफ, अल्लाह के तरफ, नूरे इलाही, हर एक ने आप देखो उस ईश्वर के तरफ हमें दिशा दी। और उस ईश्वर के समीप पहुंचने के लिए, उसको याद करने के लिए जीवन में पुनः वो दैवी गुणों की धारणा की तरफ हमें दिशा दी। तो हर एक धर्म ने कोई विशेष गुण के आधार से अपने धर्म की स्थापना, कहां स्नेह है, कहां दया भाव है, कहाँ अहिंसा है, तो अलग अलग दैविक गुणों का महत्व हमारे जीवन में महसूस कराया, उसको कर्म में लाने के लिए हमें शिक्षा दी गई। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे महानुभव जो हैं, धर्म पिताएं जो हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी प्रेरणा दी और हमारे अंदर फिर से वो दिव्यता को धारण करने के लिए हमें दिशा दी। अब हम देखते हैं कि जैसे समय बीतता जाता है, कलयुग का समय आया, तो ये जो भी धर्म पिताओं ने हमें शिक्षा दी, उन शिक्षाओं को हमने बहुत प्यार से सुना, उसको धारण करने के लिए हमने प्रयास भी किया, उसको याद करने के लिए हमने कई प्रकार के, हम कहेंगे रीति रस्म रिवाज भी अपने अपने निजी धर्मों में क्रिएट किए, रिचुअल्स क्रिएट किए, जिससे क्या होगा, वो हम गुण को अपने अंदर फिर से याद करेंगे। जैसे हमने सुना कि रिचुअल तो जो दिया जगाने का था वो किसके लिए था, किसके लिए था जी, आत्मिक स्मृति का भी दिया और देने का, नहीं? तो हम देखते हैं कि बहुत सुंदर ऐसे हमने रिचुअल्स को अपने जीवन में धारण कर लिया, समावेश कर लिया, लेकिन उसके पीछे की जो धारणा है वो हमारे अंदर लक्ष्य होते हुए भी वो अंदर धारणा आई नहीं, क्यों? और फिर हम देखते हैं सृष्टि और ही कलयुग के तरफ चला गया, क्यों? कौन सी स्मृति को हम बदल नहीं सके, कौन सी स्मृति को हम बदल नहीं पाए जी, देहभान की। और इसलिए वो देहभान की स्थिति, क्या परिवर्तन आ गया उसमें, देह अभिमान में आ गया। तो कलयुग तक हम देह अभिमान में आ गए और वो हमारा देह अभिमान नेचुरल लगने लगा, तो क्रोध जो है वो हमें नेचुरल लगने लगा और शांत रहना वो डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल, ये सब शब्द हम कहने लगे, आइडियलिस्टिक, नहीं हम देवता तो नहीं है, सिस्टर हमने व्हाइट ड्रेस तो नहीं पहना है, हम कोई स्पिरिचुअल तो नहीं है, हमें तो गृहस्थ में रहना है, तो हमें तो ये थोड़ा बहुत तो क्रोध करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो इस रूप से जीवन जीना ही पड़ेगा, तो ये शब्द हमारे जीवन में आते गए। तो हमने क्या किया, वो दिव्यता को महत्व जरूर दिया लेकिन उसको धारण करने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि हमारी स्मृति जो है वो देह भान से अभी देह अभिमान में बदल चुकी थी और देह अभिमान जो है उसको हमने नेचुरल समझ लिया कि यही हमारा अस्तित्व है, यही मैं हूं, देह को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व समझ लिया। और उसके कारण क्या हो गया, कलयुग में जो कलयुग कलह क्लेश जो है वो हमारे जीवन में आ गए। पहला क्लेश कहां आया, अंतर में ही, नहीं अंतर में आ गया, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव क्या है, मूल स्वभाव तो शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, ज्ञान का, शक्ति का, आनंद का, सुख का, और हम आ गए देह अभिमान में। तो जब भी हम क्रोध करने लगे तो हमारा मूल स्वभाव क्या हुआ, उसके साथ तो हमारा क्लेश हो गया, है ना? तो क्रोध तो हमने कर लिया लेकिन अंतर में खुश नहीं रहे, हमें अपना क्रोध करना अच्छा नहीं लगता। तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो विकारों का समावेश एक स्वभाव के रूप में हो गया, तो हम अपने आप से और ही दूर होते गए, अपनी दिव्यता से, अपनी ओरिजिनलिटी से। और इसलिए हम देखते हैं कि कलह क्लेश का जो ये समय, कलयुग का समय, आयरन एज का समय, जो दुख का समय हम कहेंगे, चिंताओं का समय, अगर आप ये चारों युगों को देखें तो हमें शिवानी बहन ने बहुत अच्छी बात समझाई थी, याद है आपको, समझाई थी ना, पहला युग ऐसा, अर्थात क्या समझाया था, उस युग में हमारे पास क्या थे, परमात्मा की दुआएं, हमारे पास ईश्वर की दुआएं और दाता स्वरूप का स्वभाव, देवता देने वाले। और फिर हमने देखा कि वो स्वभाव में थोड़ा अंतर आ गया, फिर हाथ कैसे हुआ, नीचे थोड़ा, और फिर द्वापर कैसे, ऐसे। तो हम किससे मांगने लगे, पहले ईश्वर से भक्ति करने लगे, तो भक्ति का आरंभ, भक्ति मार्ग का समय द्वापर से हुआ, मांगने लगे ईश्वर से, हमें थोड़ी शांति दो, हमें थोड़ी खुशी दो, हमारे अंदर फिर से वो पवित्रता लाओ, क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर थी, इसलिए फिर से हम मांगने लगे। हमें वो सब प्रिय है ना, वो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, इसलिए हमने ईश्वर से वो मांगना शुरू किया। और फिर आपस में भी संबंधों में मांगना शुरू किया, साधन भी मांगने शुरू किए। और फिर कलयुग का समय, ऊपर हाथ, कलह क्लेश का समय, हाय हाय का समय। अर्थात हमारे अंदर की जो अशांति और दुख की फीलिंग्स है, उसमें हम परवश अपने आप को महसूस करने लगे। हर दिन कोई न कोई और डिफिकल्ट फीलिंग्स जो है, चैलेंजिंग फीलिंग्स जो है, उसमें हम मूंझने लगे। हम अपने आप को उस चक्रव्यूह में महसूस करने लगे। तो ये स्ट्रेस है, हम इनसिक्योरिटी है, लो फीलिंग है, फियर है, ये सब नेचुरल इमोशंस फील होने लगे। नहीं, आज ये इमोशंस क्या है, बहुत स्वाभाविक रूप में हम एक्सप्रेस करते, मेरे में बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत लो फील हो रहा है, मेरे में एंजाइटी आ गई है, मैं ऐसा डर महसूस कर रहा हूँ। तो ये फीलिंग्स नेचुरल आने लगी, जो वास्तव में हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है। और फिर हम सृष्टि का भी स्वरूप देखने लगे, ये कलह क्लेश हर एक के जीवन में आ गया। प्रकृति में भी हम देखने लगे कि वहां भी असंतुलन आ गया। प्रकृति ने हमें सब कुछ, साधन संपत्ति दी, हमारी सेवा की, तो हमारी नीड्स को तो पूरा किया प्रकृति ने, लेकिन द्वापर से क्या हुआ, प्रकृति के प्रति भी हमने क्या किया, लेना, ग्रीड। तो क्या किया हमने, उसके संतुलन को तोड़ दिया। तो आज हम देखते हैं उस वहां से भी हमें कितना दुख और अशांति का समय आ रहा है। अब परिवर्तन का समय, अब फिर से हमें कौन सा समय आने वाला है, समय आने वाला, रात कितनी भी गहरी हो, लेकिन रात के बाद क्या आएगा, श्योर, पक्का, पक्का, कितना भी गहरा हो रात, मगर हमें पता है कि दूसरे दिन क्या होगा, सुबह। तो ऐसे ही कलयुग का समय तो बहुत डिफिकल्ट चल रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके बाद तो सतयुग आना ही है। और कौन बनाएगा सतयुग, हम। तो ये सतयुग का समय लाने के लिए हम देखते हैं कि इस सृष्टि में ये परिवर्तन का समय लाने के लिए निमित्त तो किसी को बनना होगा। तो निमित्त परमात्मा हमें बनाता है, लेकिन ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य परमात्मा का है, इसलिए हम देखते हैं कि उसको सृष्टि का रचयिता कहा। सृष्टि का रचयिता माने स्थूल रचयिता नहीं, क्योंकि सृष्टि स्थूल रूप में तो अविनाशी है, प्रकृति अविनाशी है, परिवर्तनशील है। तो जब सृष्टि संपूर्ण कलयुग बन जाती है, अर्थात उसकी दिव्यता जो है, संपन्नता जो है, वो समाप्त हो जाती है, तब इस फिर से इस सृष्टि को रिजुविनेट करने वाला, इस सृष्टि को फिर से सशक्त करने वाला, फिर से नई सृष्टि की रचना करने वाला रचयिता परमात्मा है, इसलिए हमने उसको क्रिएटर कहा। तो क्रिएटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड, तो वो क्रिएट कैसे करता है, कैसे करता है, परमात्मा के पास कोई जादू की छड़ी है जो इस सृष्टि को परिवर्तन कर लेगा, नहीं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब कोई कहते थे कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, पता नहीं भाग्य में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, भगवान ने ऐसा क्यों दिया, तो कहते भगवान जब बैठकर भाग्य बांट रहा था तो क्या कर रहे थे आप, सोए थे क्या आप, या आप छलनी तो नहीं ले गए कि जो भाग्य मिला वो बह गया, नहीं, शास्त्रों में लिखा है। तो परमात्मा स्वयं आकर ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहा है, और वो समय है पुरुषोत्तम संगम युग का, जब परमात्मा स्वयं आकर हमें अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने की समझ दे रहा है, श्रेष्ठ कर्म करने की श्रीमत दे रहा है, वो श्रेष्ठ कर्म करने की कलम हमें दे रहा है। और ये वो समय है पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब परमात्मा ज्ञान और योग से हमारे अंदर वो परिवर्तन ला रहा है। तो हम देखते हैं कि कभी भी जब चेंज लाना है, संस्थाओं में भी जब ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाना है, तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने के लिए कुछ आत्माएं, कुछ उस संस्था के जो लोग हैं वो निमित्त बनते हैं, उनको कहा जाता है एजेंट्स ऑफ चेंज, है ना। सब तो नहीं निमित्त बनते हैं, लेकिन कुछ, है ना। तो वो संस्था के परिवर्तन के लिए जो निमित्त बनते हैं, एजेंट्स ऑफ चेंज बनते हैं, तो उनका पार्ट क्या होता है, उस समय जो ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम है, जो पुराना समय और नया उसके बीच का जो समय कैसा होता है, हलचल का समय होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल एज। तो ये वो समय है जब परमात्मा हमारे अंदर फिर से वो दिव्यता की रचना कर रहा है, अर्थात परमात्मा इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए हमें निमित्त बना रहा है। तो परमात्मा पिता फिर से आह्वान कर रहा है कि हमें क्या बनना है, इस सृष्टि परिवर्तन में कौन सा पार्ट प्ले करना है, एजेंट्स ऑफ चेंज का निमित्त बनना है। परिवर्तन करने के लिए हमें स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा के सहयोगी बनना है। तो एजेंट्स ऑफ चेंज जो बनेंगे फिर क्या होगा, जब वो सृष्टि जो कंपनी है जो संस्था है वो जब ठीक हो जाएगी, नई हो जाएगी, तो एजेंट्स ऑफ चेंज का रोल क्या होगा वहां, क्या होगा उनका रोल जी, वो रोल क्या होगा उनका, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके उस संस्था को फिर से ठीक किया ना, तो उनका रोल क्या होगा, लीडरशिप रोल होगा, फिर नई संस्था को वही लीड करेंगे। ऐसे जो इस समय पर एजेंट्स ऑफ चेंज बनते हैं, जो परमात्मा के द्वारा ये डायरेक्ट ज्ञान को समझकर श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को फिर से संपन्न बनाते हैं, दैवी जीवन बनाते हैं, वो फिर उस नई सृष्टि के मालिक बनते हैं, नेतृत्व का रोल प्ले करते हैं, अर्थात वही फिर संपूर्ण देवी देवता बनते हैं। तो ये समय है ईश्वरीय पढ़ाई का समय। संगम युग पर परमात्मा हमें ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ देता है। नहीं? आपको भी ये पढ़ाई का समय अच्छा लग रहा है ना, 3 दिन से पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो परमात्मा ये बहुत सुंदर ईश्वरीय गॉडली स्टूडेंट लाइफ जो है हमें देते हैं। रोज हमें परमात्मा ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत सुंदर जर्नी है ना। तो अभी हमें परमात्मा ने जागृत किया है, लेकिन ये जर्नी में परिवर्तन करने के लिए रोज हमें अपने लिए समय देना होगा। तो रोज परमात्मा हमें ये बातों को स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये बातें जितनी सहज लगती है समझने के लिए, जब हम इसको जीवन में उतारना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो पुराने सोच विचार है, पुराने समझ है, पुराने संस्कार है, उसको अनलर्न करना, नहीं, पुरानी अंडरस्टैंडिंग को अनलर्न करना डिफिकल्ट होता है, पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना मुश्किल लगता है। तो परमात्मा रोज बैठकर हमें ये समझ देते हैं और हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, धीरे धीरे परमात्मा के इस ज्ञान की समझ से फिर से अपने आप को उस आत्मिक दिव्य स्वरूप में इमर्ज करना है। अब यहाँ जब हम हैं इस ज्ञान सरोवर में 3 दिनों से, तो क्या महसूस कर रहे हैं कि ये आत्मिक स्वरूप को महसूस करना, ये दैवी गुणों को महसूस करना सहज लग रहा है, सहज लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशंस जो हैं वो हमें मदद कर रहे हैं। यहाँ जो आप समर्पित भाई बहन देख रहे हैं, उनके संकल्प, बोल, कर्म, उनका व्यवहार, उसमें वो दिव्यता दिखाई दे रही है, इसलिए सहज लग रहा है। अब हमें जैसे यहाँ एक मॉडल बनाया, ऐसे ही हमें कहाँ मॉडल बनाना होगा, कहाँ बनाना होगा, अपने घर में और फिर अपने कार्य क्षेत्र में। तो वहां जब हम उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली घर में और फिर वो हमारे कार्य क्षेत्र में आ जाएगा। तो परमात्मा ने विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, कलयुग को सत्युग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसका है, हमें कौन सा सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है, नहीं? बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमें कौन सा सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है, स्व के परिवर्तन का, कि हम फिर से अपने आप को अपने उस दैवी स्वरूप में स्थित कर सकें, फिर से हम अपने आप को अपने उस कलयुगी जो हमारा पुराना स्वरूप था, पुराना जीवन देह भान वाला, देह अभिमान वाला था, उसको परिवर्तन करके उस आत्मिक श्रुति में स्थित कर सके। तो जैसे ही हम अपने जीवन में ये पुरुषार्थ करना आरंभ करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो ओरिजिनलिटी है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा परिवर्तन करने के लिए बहुत सुंदर समझ देते हैं। जैसे हमने लेसन्स में सुना कि बार बार हमें क्या करना है, वो जो 5वां फोल्डर है उसको ओपन करना है, अपने प्रति भी बार बार कौन से चिंतन में रहना है कि मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा। तो हमें वो गुणों को, दैवी गुणों को या शक्तियों को अपने अंदर धारण करने के लिए मेहनत नहीं करनी, अगर हम बार बार ये कहेंगे मुझे शांत रहना जरूरी है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे और रिलैक्स रहना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मैं हूं ही शांत स्वरूप, ये स्मृति सहज लगती है, बहुत सुखदाई है। तो ये ऐसे देखा जाए तो विधि परमात्मा ने बहुत हमें सहज दी है। तो जितना जितना हम ये ज्ञान को सुनते जाते हैं और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो इसका सुख जो है हमें अनुभव होता है। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के लिए रोज परमात्मा हमें शिक्षाएं देते हैं, ताकि मेडिटेशन में भी नवीनता आए। वही विचार हम करेंगे तो परमात्मा के साथ भी हमारे कम्युनिकेशन में नवीनता आए और दिव्यता आए और सुख का अनुभव करें। तो रोज हम ज्ञान की मुरली सुनते हैं, जिसपे रोज हमें परमात्मा ये सृष्टि चक्र के और राज खोलते हैं। बहुत सारे राज तो अभी आपको सुनाए नहीं है, बहुत सारे राज एवरी डे रिवील होंगे। तो यहां से जाने के बाद आपका कोर्स तो यहाँ पूरा हो जाएगा, उसके बाद सेंटर पर आप जाकर फिर ये मुरली सुनना शुरू करेंगे। कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे अलग सुनकर, फिर जब आप सुनेंगे तो ये सृष्टि चक्र के भी और सुंदर राज हमें पता पड़ेंगे। ओम शांति। थोड़े समय के लिए हम उस साइलेंस में बैठेंगे, फिर से अपने आप को अपने उस दिव्यता की अनुभूति में ले जाएंगे। बहुत समय से हम उस सत्युग के बारे में सुन रहे थे, अपने उस सत्युगी स्वरूप को महसूस करेंगे। परफेक्शन वर्ड को हमने हमेशा अप्रिशिएट किया, चलिए अपने ही परफेक्ट फॉर्म को देखें। कार्य में परफेक्शन, रिलेशनशिप्स में परफेक्शन हमेशा चाहते थे। परमात्मा ने हमें स्मृति दिलाई कि आप ही परफेक्ट हो, अपने स्वयं की उस दिव्यता को महसूस करें। मन की आंखों से अपने ही दिव्य स्वरूप को देखें। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप हूं। अपनी दिव्यता को महसूस करते हुए इस स्मृति को पक्का करें कि ये मेरा निज स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है। मैं दिव्यता से संपन्न देवात्मा हूं। देवता के रूप में सुबह से रात तक मुझे संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सकारात्मक ऊर्जा देना है, शांति की ऊर्जा, सुख की ऊर्जा। सम्मान की ऊर्जा, सहयोग की ऊर्जा, जिनके संपर्क में मैं आता हूं मुझे देना है। जितना मैं देता जाऊंगा गुण और शक्तियों से भरपूर महसूस करूंगा। इस दिव्यता का स्रोत परमपिता परमात्मा, जिनको याद करते ही उस सुप्रीम लाइट से, वो शांति की ऊर्जा, शक्तियों की ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। ईश्वर पिता के सानिध्य में हम अपने आप को भी कितना दिव्य महसूस कर रहे हैं। हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वरीय गुण और शक्तियों से संपन्न है। इन संपन्नता को अंतर में समाते हुए, इसी दिव्यता में अपने आप को महसूस करें। ओम शांति।